ओम नमस्ते जी। 361वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। दसवें समुल्लास में आचार अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये बताने की चेष्टा की जा रही थी कि जो पशु वध यज्ञों के माध्यम से अवैदिक काल में प्रचलन में आया, उसका खंडन हुआ जा रहा था। तो कुछ प्रमाण पहले भी दिए, अभी उन्हीं प्रमाणों का थोड़ा सा पिछला भाग लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि पशु यज्ञों की संज्ञा पशु बंध है, पशु वध नहीं। यानी पशु को बांध के रखना है, न कि उसका वध करना। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ के अवसर पर पशुओं की प्रदर्शनी के निमित्त पशुओं को यूप से बांधा भर जाता था। पशु यागों में यदि पशुओं का वध अभिप्रेत होता तो उनकी संज्ञा पशुवध होनी चाहिए थी। निगंटु अथवा धातु पाठ आदि में वध अर्थक धातुओं में आलभ का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। इस संदर्भ में मनुस्मृति अध्याय 2 के ये श्लोक द्रष्टव्य हैं। वर्जयेन मधुमांसम च गंधमाल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानियानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंभ मुपघातम परस्य च स्त्री प्रेक्षणालंभने मैथुन शंकायाम गौतम धर्म सूत्र 2:22। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के प्रसंग में हिंसा का सर्वथा निषेध करने वाले श्लोकों में स्त्रियों का आलंभन न करने का अर्थ स्त्रियों का स्पर्श करने के सिवा और क्या हो सकता है। प्राणी मात्र की हिंसा का निषेध करने के बाद स्त्रियों के वध का निर्देश कैसे संगत हो सकता है। अथास्य ब्रह्मचारिणः दक्षिणाम समधि हृदयम आलभते पारस्कर क्रिया सूत्र। इसके अंतर्गत उपनयन प्रकरण के अंतर्गत ये वाक्य और इसका अर्थ ये है, आचार्य ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करता है। हरिधर गदाधर आदि सभी भाष्यकारों ने आलभते का अर्थ स्पृशति किया है। आलभेता सकृदीन करेण च शिरोरुहान सुश्रुत कल्पस्थान 1:19। वरो वध्वा दक्षिणांसम अधि हृदय आलभते विवाह प्रकरण। कुमारम जातम पुराण्यैर्लंभात सर्पिर मधुनी हिरण्येन आशयेत जातकर्म पारस्कर गृह सूत्र। पारस्कर गृह सूत्र के उपर्युक्त वाक्यों तथा मीमांसा शास्त्र 2:270 की सुबोधिनी टीका में आए वत्सस्य समीप आनयनार्थम आलंभः स्पर्शो भवति वाक्य में आलंभ का अर्थ स्पष्ट रूप से स्पर्श करना है। तब प्रजापतये पुरुषान हस्तिन आलभते का अर्थ प्रजापति अर्थात राजा के लिए हाथी प्राप्त करना है करता है, इस प्रकार करना होगा। इसी प्रकार अग्निशोमीयम पशुम आलभेत इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों में भी आलभेत स्पर्श अथवा प्राप्ति का ही द्योतक होगा, न कि मारने का। अवदान शब्द दुदाय दाने दो अवखंडने देंग रक्षणे इत्यादि धातुओं से सिद्ध होता है तथा यज्ञ में भिन्न भिन्न निमित्त हवि के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान मीमांसक लोग इसे दो अवखंडने से निष्पन्न मानकर पशु के विभिन्न अंगों को काट काट कर यज्ञाग्नि में होम करते हैं, परंतु शतपथ ब्राह्मण के उपज्ञाता याज्ञवल्क्य स्वयं इस शब्द को देंग रक्षणे से निष्पन्न मानते हैं। यह संदर्भ शतपथ कांड 1:7 में आए तदेनांस्तदवदयते से स्पष्ट है। याज्ञवल्क्य कहते हैं तदेनांस्तदवदयते तस्माद् यत्किंचनाग्नौ जुह्वति तदवदानम नाम, अर्थात आहुतियों का नाम अवदान है, इसलिए है क्योंकि वे रक्षा करती हैं, ऋण के बंधन से बचाती हैं। मुख्यतः यज्ञ के पर्याय मेध शब्द को अश्वमेध गोमेध अजमेध पुरुषमेध आदि शब्दों में देखकर वैदिक यज्ञों में पशु हिंसा विधान का भ्रम होता है। वस्तुतः वेदों में तो अश्वमेध शब्द को छोड़कर अन्य किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। मेध्री धातु के मेध्री संगमे हिंसायाम च इस धातु पाठ के अनुसार शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, लोगों में एकता या प्रेम को बढ़ाना और हिंसा, ये तीन अर्थ हैं। परंतु जिस धर्म व समाज में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो, वहां मात्र हिंसा परक अर्थ मानकर निरीह पशुओं की हत्या के विधान की कल्पना करना सर्वथा असंगत है। पुरुष मेध पुरुष यज्ञ तथा नृयज्ञ तीनों पर्याय वाची है। मनुस्मृति में नृयज्ञ की व्याख्या नृयज्ञो अतिथि पूजनम मनुस्मृति 370 कहकर ही कही गई है। नृयज्ञ व नरमेध यज्ञ में मनुष्य की बलि देना अभिप्रेत न होकर उत्तम विद्वानों की पूजा करना है। मेधरी धातु के संगमनार्थ को लेकर मनुष्यों को उत्तम कार्य करने के लिए संगठित करना भी नृमेध के अंतर्गत आता है। सामवेद के कुछ मंत्रों का ऋषि मंत्रार्थ दृष्टा नृमेध है। निश्चय ही वह मनुष्यों की बलि चढ़ाने वाला नहीं हो सकता। मनुष्यों में संगतिकरण या मेल मिलाप बढ़ाने वाले की संज्ञा नृमेध हो सकती है। अश्वमेध अजमेध तथा गोमेध को भी प्रचलित अर्थों में ग्रहण नहीं किया जा सकता। शतपथ 13:16 में कहा गया है राष्ट्रम वा अश्वमेधः वीर्यम वा अश्वः, अर्थात अश्व शब्द राष्ट्र तथा वीर्य का वाचक है। तब अश्वमेध का अर्थ देशवासियों के बल व वीर्य की वृद्धि करना तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना ही शास्त्रानुमोदित है। यजुर्वेद 23:19-40 मंत्र के जिन मंत्रों का अश्वमेध में विनियोग करके महीधर आदि ने उनके अत्यंत अश्लील अर्थ करके वेदों को कलंकित किया है, उनमें कहीं भी अश्व की हत्या का उल्लेख नहीं है। वस्तुतः इन मंत्रों के देवता गणपति राजप्रजे प्रजा श्री विद्वांस सभासद आदि हैं। इससे स्पष्ट है कि इन मंत्रों का वर्ण्य विषय राष्ट्र एवं उसकी शासन व्यवस्था है। महाभारत के शांति पर्व 336 में राजा वसु के अश्वमेध का वर्णन है, जिसमें उस समय के सब बड़े बड़े ऋषियों और विद्वानों ने भाग लिया था। उसके संबंध में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है न तत्र पशु घातो अभूत। वहीं आगे चलकर अध्याय 337 में अजमेध के विषय में लिखा है अजैर यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुति अजसंज्ञानी बीजानि छात्रान्नो हन्तुमर्हथ नैष धर्मः सताम देवा यत्र वध्येत वै पशुः। अर्थात वैदिक साहित्य में जब अजों से यज्ञों में होम करने को कहा जाता है तो वहां अज नामक बीजों से तात्पर्य होता है बकरों का वध करना ठीक नहीं, पशुओं की हत्या करना भले आदमियों का धर्म नहीं है। वैदिक साहित्य में यत्र तत्र सर्वत्र गोवध को महापाप माना गया है। जैसे यज्ञ की संज्ञा अध्वर यानी हिंसा रहित है, वैसे ही गौ की अज्ञा यानी न मारने योग्य है। अतएव वेद में तथा अन्यत्र गोवध करने वाले के लिए प्राण दंड दिए जाने का आदेश है। ऐसी अवस्था में गोमेध के नाम पर गौ की हत्या करने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः गौ शब्द अनेकार्थवाची है, इसलिए गोमेध के वाणी का संस्कार करना, धरती को कृषि योग्य बनाना, गौ से उपलब्ध होने वाले घी दूध आदि की वृद्धि करना तथा संस्कार करना, धरती को कृषि योग्य बनाना, गौ से उपलब्ध होने वाले घी दूध आदि की वृद्धि करना तथा उपलक्षण से पशु मात्र के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था इत्यादि अनेकों अर्थ हो सकते हैं। अंग्रेजी में उपलक्षण से पशु मात्र के पालन पोषण की समुचित, अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द का अर्थ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल है। जंद भाषा का गोमेज आर्यों के गोमेध शब्द का ही तो अपभ्रंश है। पारसी धर्म में खेती करना धर्म समझा जाता है, अतः खेती से संबंध रखने वाले समस्त क्रियाकलापों का नाम गोमेज है। द पारसी रिलीजियन enjoins agriculture as religious duty and this is the whole meaning of gomej essay on the sacred language writers and religion। कृषि के लिए समय समय पर वर्षा का होना आवश्यक है, देव यज्ञ इसमें परम सहायक है, इसलिए आर्यों का जीवन यज्ञमय था। यज्ञ के प्रसंग में जहां कहीं भी पशु शब्द से संबंध रखने वाले नाम आए हैं उन सभी का तात्पर्य अन्न से है, चतुष्पाद पशु से नहीं। वेदों में अन्नमय पशु के होम का ही विधान है। द्विअर्थक शब्दों से जो भ्रम हो सकता है उसका निराकरण वेदों तथा अन्य ग्रंथों ने स्वयं कर दिया है। अथर्ववेद में इस विषय में जो बात आई है वो कल की श्रव्य कणिका में आपको कहेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।